జయ అనిల ప్రేమధన కరుణా ప్రచోనా ప్రభు కథా గెలా আচার্য ঠাকুর স্বরূপ রূপ কহা সনাতন কহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন মরা ভট্ট যুগ কাহা কবিরাস এক কালে কথা গেলা গোরা নটরাজ আশানে কুটিব মাথা অনলে পশিব গৌরাঙ্গুণের নিধি কোথা গেলে পাব শেষব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তমদাস জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Shri Rup Shri Sanatana Bhattar Gunad Shri Rup Shri Sanatana Bhattar Gunad Shri Jiva Gopala Bhatta Dasar Guna Ichai Gosai Kari Charana Vanda Ichai Gosai Kari Charana Vanda जहाँ है ते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण जहाँ है ते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण ऐसाई गोसाई जार मोहितार दास दस बारह पद रेणु मोर पंचग्रास तादिर चरणे से भक्त सन्निवास जनमे हाय एया भीलाश जनमे हाय एया भीलाश ओम नमो भगवते वासुदेवाय
हरे कृष्णा श्रीला तमाल कृष्ण महाराज ने श्रील प्रभुपाद से पूछा आज गुरु पूर्णिमा भी है आज श्रील प्रभुपाद पूछ रहे हैं हाँ आज कोई विशेष त्योहार या कुछ खासियत है महत्व है इसका तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं गुरु पूजा वो तो आप रोज करते हैं गुरु पूजा वो तो आप रोज करते हैं तो इस्कॉन के भक्तों के लिए गुरु पूर्णिमा ही है हर रोज हम करते हैं श्री गुरु वंदना यहाँ पे भी हमने जो लिखा है उसके पहले गुरु पूजा हुई थी इसके अतिरिक्त बताया जाता है कि व्यास पूजा महोत्सव वर्तमान आचार्यों के और श्रील प्रभुपाद के हम मनाते हैं उनके आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में श्रील भक्ति माधुरी गोविंद गोस्वामी महाराज की जाए तो इसके अलावा श्रील प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि मुझे हर्ष की बात है कि आप लोगों ने गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया पूरे रात कीर्तन करते हुए तो श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं गुरु पूर्णिमा सामान्यतया मायावादी पंथों द्वारा आयोजित किया जाता है। और गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य है कि गुरु को अपना आभार प्रकट करें, विशेष करके शिष्य द्वारा साल में एक बार, इसको गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है गौड़ी वैष्णवों का, श्रील प्रभुपाद बता दें कि हमारा जो आभार है गुरु के प्रति, हम व्यास पूजा के उपलक्ष में मनाते हैं, तो इसी उपलक्ष में आप सबसे अनुरोध है कि श्रील प्रभुपाद का व्यास पूजा बुक निकलने वाला है इस्कॉन दिल्ली के, दिल्ली एनसीआर के भक्तों के लिए। बहुत ही कम ऑफरिंग्स गए हैं इस्कॉन पंजाब विभाग के, सभी भक्तों से अनुरोध है, पंजाब विभाग, रोहिणी और बहादुरगढ़, जितने भी भक्तों को, कांग्रीगेशन को, टेम्पल डिवोटीज को आप प्रेरित कर सकते हैं, उनको उत्साह बढ़ाए कि श्रील प्रभुपाद के प्रति हम अपना आभार प्रकट करें, जिनकी कृपा से आज हम यहाँ बैठे हैं। यदि प्रभुपाद न होते, कबे के होते, हमारा क्या हो जाता? प्रभुपाद नहीं होते तो भटकते होते। कल लास्ट डे है ऐसा सूचना दी जा रही है करना चंद प्रभु को, उम्मीद है कि उन्होंने भी भेजा है, अगर नहीं है तो वो भी भेजें, सबको भेजें, सबको भेजने के लिए बोलें, प्रेरित करें, बहुत ही जरूरी है। हमारे जीवन में प्रभुपाद का क्या स्थान है रोज हमें चेक करना चाहिए, जिनकी कृपा से हम भक्ति में आए, इतनी सुविधाएं मिल रही है, हाईएस्ट फिलॉसफी, टॉप मोस्ट फिलॉसफी, सिंपली वंडरफुल, आवर फिलॉसफी इज वंडरफुल, और प्रसादम इज वंडरफुल, डिवोटीज आर वंडरफुल। तो भक्तों ने बताया श्रील प्रभुपाद यू आर वंडरफुल, सो दैट प्रभुपाद ने उत्तर दिया क्या दिया, कृष्णा इज वंडरफुल। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये हुआ है, सब संभव हुआ है श्रील प्रभुपाद। लेकिन ये बता रहे हैं कि असली आध्यात्मिक गुरु की जो उपासना है वो अपने शिष्यों द्वारा, श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जन्माष्टमी के अगले दिन आप मना सकते हैं करके, प्रभुपाद अपनी व्यास पूजा के बारे में बता रहे हैं। इसी प्रकार सभी वर्तमान आचार्य भी मनाते हैं अपने शिष्यों के कि उनके शुद्धता के लिए, उनके भक्ति में उद्धार के लिए। और व्यास पूर्णिमा भी इसलिए बताया जाता है कि क्योंकि आज श्रील व्यास देव का आविर्भाव दिवस है, ऐसा भी बताया जाता है। व्यास सोनम, व्यास सोनम भी बताया जाता है, वो कौन है व्यास सोनम? सुखदेव गोस्वामी, उनकी कृपा से, उन दोनों की कृपा से हमें श्रीमद् भागवत मिल रहा है। व्यास आसन पे व्यक्ति जब बैठता है तो प्रामाणिक गुरु का प्रतिनिधि बनना है उसे। और यह भी बताया जाता है कि व्यासदेव, व्यास शब्द का अर्थ ही हुए कि वो व्यक्ति जिन्होंने विस्तार किया है, वो जो विस्तार करते हैं। जीवरण इस तरह लागे सूत्र कल व्यास, मायावादी सुनिलो भाष्य होइले सर्वनाश। जीवों के कल्याण के लिए वेदांत सूत्र दिया श्रील व्यास देव ने। एक होता है वेद, वेद जितने प्रमुख तो एक वेद था, फिर श्रील व्यास देव ने द्वापर युग के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में वेदों का संकलन किया, तीन भागों में लिखित रूप में उनको प्रस्तुत किया। फिर उन वेदों का निष्कर्ष निचोड़ उपनिषदों के रूप में है, और उपनिषद एक प्रकार से शीर्षक हैं वेदों के, जो प्रमुख शिक्षाएं हैं उनके। लेकिन उपनिषदों का भी जो मर्म है, वेदांत जो उपनिषद, उनका भी मर्म जो है सूत्रों के रूप में व्यासदेव ने प्रस्तुत किया है वेदांत सूत्र। तो भक्तों के लिए मध्व विजय में बताया गया कि व्यासदेव का हृदय जो है बिल्कुल क्षीर सागर जैसा था, विशाल और बहुत ही गहरा, और उसमें उन्होंने अपनी कृपा और जन सम्मान, जीवेर दया, ये मंदर पर्वत हैं, और ये मंदर पर्वत से क्षीर सागर का मंथन हुआ, और इसके द्वारा श्रीमद् भागवतम, महाभारत, वेदांत सूत्र, ये सब निकल आए इस क्षीर सागर से। वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवतम, जो कि एक्चुअली वेदांत सूत्र का उसी की परिभाषा मानी जाती है, व्यासदेव ने दिया है। तो हम उनके बहुत ही आभारी हैं कि जीवेरण इस तारा लागी शिव जन सामान्य के उद्धार के लिए उन्होंने दिया है। तो इसलिए बताया गया कि भागवत में कई जगह वर्णन आता है कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेर ईश्वरः, उनसे बढ़कर और कौन हो सकता है। बताया जाता कि 27 व्यासदेव हुए हैं पहले, 28वें जो हमारे इस युग के हैं, बद्रिकाश्रम है अभी भी, वो स्वयं नारायण है, ऐसे कुछ वर्णन आते हैं। लेकिन ये भी बताया गया कि वो शाक्यवेश अवतार हैं, भगवान के लेखन हेतु शाक्यवेश अवतार, लिटररी इनकार्नेशन। और हम भक्तों के लिए विशेष करके जो ब्रह्म मधु गौड़ी संप्रदाय के हैं, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्वाचार्य ने, श्रीपाद मध्वाचार्य ने व्यास देव से ही ज्ञान प्राप्त किया था बद्रिकाश्रम में, उनके आशीर्वाद से ही आगे जाके उन्होंने प्रचार किया और भगवत गीता और भागवतम की टीकाएं लिखी, बहुत सारे ग्रंथ दिए हमें श्रीपाद मध्वाचार्य ने, जो कि मुख्य प्राण है। तो हमारे गुरु परंपरा में व्यासदेव का बहुत ही प्रमुख स्थान है, व्यासदेव की कृपा से ये सब हो रहा है, जितने भी ग्रंथ हैं। और व्यासदेव ने बताया जाता है कि हाउ मेनी वर्सेस हैज ही कंपाइल्ड, कितने श्लोकों का संकलन किया था वैदिक शास्त्रों में, हाँ? 4.5 लाख, 4 और 4.5 लाख के बीच उन्होंने संकलन किया, 4 लाख तो समय तो बदले, लेकिन बताया जाता है कि इनमें से बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जो कि शुद्ध भक्ति से संबंधित नहीं है, इसलिए नारद मुनि को स्वयं आना पड़ा उनको आदेश देने के लिए। हालांकि ये भी लीला ही है कि उनके अंदर शोक उत्पन्न किया भगवान ने, कि जन सामान्य को श्रीमद् भागवतम देना था, कि भगवान की लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं हुआ था, इसलिए नारद मुनि ने आकर उनको प्रेरणा दी और उनके प्रचोदन से ये श्रीमद् भागवतम का संकलन हुआ। जीव गोस्वामी विष्णु पुराण में ये लिखते हैं कि श्रील व्यासदेव हर बार एक ही अवतार नहीं है, कभी कभार ये शक्ति प्राप्त, शक्ति प्रदत्त कोई जीव होता है जन सामान्य के सेवा के लिए, और कभी कभी विष्णु तत्व स्वयं होते हैं। और विष्णु पुराण का यहां पर उदाहरण देते हैं अपने तत्व संदर्भ में कि अलग अलग शक्ति प्रदत्त जीव या शक्तिपात प्राप्त जीव जो है व्यासदेव का पद लिखता है इस शक्ति अवेश अवतार के रूप में। तो कई लोग ये भी मानते हैं कि व्यासदेव भी एक पद ही है, और मध्व संप्रदाय में ये माना जाता है कि मध्वाचार्य ने अपने 78वें साल के बाद जब वो अप्रकट हुए, अब बद्रिकाश्रम में हैं, व्यासदेव की उपासना कर रहे हैं, और बताया जाता है कि इस कल्प के अंत में वो व्यासदेव का पद लेंगे और व्यासदेव आगे ब्रह्मा का पद लेंगे, इस प्रकार मध्व संप्रदाय में विश्वास है। लेकिन जो भी है, स्पष्ट है कि व्यासदेव भगवान स्वयं भगवत गीता के 10वें अध्याय में बोलते हैं, मुनिनाम अहम व्यासा, मैं व्यास हूँ मुनियों में, भगवान स्वयं ये संपुष्ट कर रहे हैं। आगे मुनिनाम अप्यहम व्यासः, बद्रिकाश्रम में अभी भी हैं, और हमारे लिए वृंदावन दास ठाकुर व्यासदेव के विस्तार हैं, अवतार हैं, जिन्होंने चैतन्य भागवत दिया है, जैसे कि श्री व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम दिया, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन पूरी तरह उसमें किया गया, उसी प्रकार चैतन्य भागवत में बहुत सारी लीलाओं का वर्णन हुआ, चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जो कि व्यासदेव के अवतार हैं उन्होंने किया। बताया जाता है कि कई वर्णन आते हैं कई साहित्य में चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो यहां पे बताया गया कि आगे आने वाले कल्प, मैंने हम जितेंद्र प्रभु से ये बात सुनी थी कि श्रीमद् भागवतम में भी श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत सारा वर्णन आएगा आने वाले युग में, जैसे राम और कृष्ण का जितना वर्णन हो रहा है सभी पुराणों में उपलब्ध है ये। अब नरसिंह पुराण उठा के पढ़ोगे उसमें राम जी का वर्णन है बहुत सारा,
लाइक नरसिंह पुराण, तो सभी पुराणों में वर्णन आता है राम और कृष्ण का, ठीक उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भी श्रीमद् भागवत में बहुत ही तीव्रता से गहराई से होगी। ये हम लोगों के लिए विशेष सौभाग्य है कि हम इस युग में आए जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं, अन्य युगों में गौर नारायण आते हैं। तो इसलिए जीवेर निस्तार लागे सूत्र कलो व्यास, उनका आभार प्रकट करना चाहिए व्यासदेव का, श्री व्यासदेव की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुधरमा श्री श्री गौरनिताय की जय। श्रील सनातन गोस्वामी पाद जिनका तिरुभाव भी आज हम मना रहे हैं, इसलिए हमने तिरुभाव भजन गाया पहले। श्रील सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य हैं और भक्ति सिद्धांत आचार्य हैं। संबंध आचार्य अर्थात भगवान अथवा ईश्वर जीव और जगत अथवा प्रकृति के बीच का संबंध ठीक से उन्होंने प्रकट कराया, उसको उद्बोधन कराया, इसलिए संबंध आचार्य हैं। इससे संबंध आदि देव मदन मोहन है, इसलिए शील सनातन प्राण धन है हम बोलते हैं मदन मोहन को। राधा मदन गोपाल विग्रह का भी आविर्भाव लीला जो है सनातन गोस्वामी पाद से जुड़ी हुई है। और अक्सर ये देखा जाता है कि आचार्यों के तिरुभाव तिथि में वैसे तो बहुत सारी लीलाएं हैं, बताया जाता है कि हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए उनकी शिक्षाओं के ऊपर, क्योंकि उनकी लीलाओं का तो वर्णन होता ही है अक्सर, और सुनना अच्छा भी लगता है, लीलाओं को सुनना आसान भी है एक तरीके से तत्व को सुनने की तुलना में। फिर भी थोड़ी सी तपस्या हमें करनी चाहिए कि आचार्यों के तिरुभाव दिवस में उनके शिक्षाओं का हम ध्यान रखें। वो विख्यात इंग्लिश में एक लाइन भी है जो कि श्रील प्रभुपाद यूज करते हैं श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में, कौन बोल सकता है? ही रीजन्स इल हू सेज वैष्णवस डाई, उसके बाद से कैन से लाउडली
He reasons ill who says Vaishnavas die when they are still living in sound. Vaishnavas die to live and living tries to spread the holy name around.
Lives in sound and dies to live. दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। वैष्णव का जब तिरुभाव होता है वो जीवित रहने के लिए, हालांकि नित्य लीला प्रविष्ट हैं, उसके अलावा जीवित रहने के लिए। जीवित कैसे रहते हैं? Lives in साउंड। तो अधिक से अधिक उनके वाणी का श्रवण होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने भी बताया आई विल फॉरएवर बी प्रेजेंट इन माय बुक्स। तो श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने तो कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, संकलन किए हैं, बृहद भागवतामृत है, उनकी दिग्दर्शनी टीका है और शत भागवत अनुबंध भी है, उन्होंने टीका लिखी है, और हरि भक्ति विलास है जिसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको सहयोग दिया था और उन्होंने पूरा उनको उसका श्रेय भी दिया, दक्षिण भारत से एक ब्राह्मण ने करके उसका संकेत दिया, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी नहीं चाहते थे किसी भी प्रकार से अपना गुणगान, तो उनका वो भी संकेत दिया गया था। सनातन गोस्वामी पाद ने भी इसी प्रकार कई सारे ग्रंथ लिखे और विशेष करके हरि भक्ति विलास भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भक्ति के विधि का वर्णन है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जिनके आविर्भाव के 2 साल बाद सनातन गोस्वामी पाद का आविर्भाव हुआ था 1488 में, उन्होंने आदेश दिया था श्री रूप सनातन दोनों को कि व्रज में जाएं, वहां पे भक्ति तत्व का के बारे में ग्रंथ लिखें, वहाँ पर जो लुप्त हुई जो लीला स्थलियाँ हैं उनको पुनर्जीवित करें और जीवन रीति और शिष्टाचार वैष्णव के उसके बारे में भी वर्णन करें और विग्रह स्थापना और उसकी विधि को भी विधिवत समझाएं। యారూప మంజరీ ప్రేష్ట పురస్యాద్ రతి మంజరీ సోచ్యతే నామభేదేన లవంగ మంజరీ బుధై సద్య గౌర అభిన్నతను సర్వారాధ్య సనాతన తామేవ ప్రవిశత్ కార్యాన్ మునిరత్న సనాతన. జో రూప్ మంజరీ జో రూప్ గోస్వామి హై ఉన్కే ప్రియ హై రతి మంజరీ జో కి సనాతన్ గోస్వామి హై ఔర్ ఏక్ ఔర్ నామ్ హై ఉన్కా లవంగ మంజరీ. ఔర్ ఇస్కే అలావా బతాయా గయా కి సద్య గౌర అభిన్నతను భగవాన్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు గౌరాంగ మహాప్రభు సే అభిన్న హై సనాతన్ గోస్వామి గౌర అభిన్నతను. ఔర్ ఏ భీ బతాయా గయా సర్వారాధ్య లోకానాం హితకారిణో ధీరా జన ప్రియో ప్రియకరో సబ్కే లియే ప్రియ హై సర్వారాధ్య సనాతన తామేవ ప్రవిశత్ కార్యాన్ మునిరత్న సనాతన. మునిరత్న సనాతన్ కౌన్ హై? చార్ కుమారో మే ఏక్ సనాతన్ హై, సనక్ సనాతన్ సనంద ఔర్ సనాత్, యే సనాతన్ సనత్ చౌదహ సనత్ హై, సనక్ సనాతన్ సనంద ఔర్ సనాత్. తో యే సనాతన్ ఋషి సనాతన్ ముని భీ ఇన్మే ప్రవిష్ట, ఇన్కా భీ ఆవేశ్ హై సనాతన్ గోస్వామి పే, యే ఉన్కా ఉన్కా స్వరూప్ హై. మధ్య లీలా చైతన్య చరితామృత కి మధ్య లీలా 19వ అధ్యాయం వర్ణన హై. మహాప్రభుర్జత బడ బడ భక్త మాత్ర రూప సనాతన శబార్ కృపా గౌరవ పాత్ర. రూప సనాతన్ గోస్వామి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కే బహుత్ సారే భక్త హై, బడే బడే ఉన్ సబ్ కే భీ ఆరాధ్య పాత్ర తే, సమ్మాననీయ తే, వందనీయ తే రూప సనాతన్. ఆగే బతా గయా కేహ జది దేశే జా జా దేఖి వృందావన తారె ప్రశ్న కోరే నా ప్రభుర్ పరిషద గణ. జో భీ అప్నే దేశ్ ఆతా థా వాపస్ వృందావన్ చల్కర్ వృందావన్ కా దర్శన్ కర్కే వృందావన్ కి యాత్రా కర్కే వాపస్ లోట్తా థా ఉసే మహాప్రభు కే జితనే భీ పార్షద్ హై యే ప్రశ్న కర్తే కి రూప్ గోస్వామి ఔర్ సనాతన్ గోస్వామి కే బారే మే కైసే కాహా తాహా కై చేరా హే రూప సనాతన కై చే రహే కై చే వైరాగ్య కై చే భోజన. ఓ కైసే హై కహా రహతే హై కైసే జీతే హై క్యా ఖాతే హై ఉస్కే ఉత్తర్ మే ఆగే ఉత్తర్ హువా నే కై చే అష్ట ప్రహార్ కరేనా శ్రీ కృష్ణ భజన తాబే ప్రశంసియా కహే సేయి భక్త గణ. కైసే సంభవే कि रूप और सनातन 24 घंटे भगवान का भजन कर पा रहे हैं. बताया जाता है कि दो दंड अर्थात एक मुहूर्त, चार मुहूर्त, लगभग डेढ़ घंटा सोते थे वो. यहां पे बताया गया अनिकेत ढूंढे बाने జతా వృక్ష గణ ఏకా ఏక వృక్షేర్ తలే ఏకా ఏక రాత్రి శయన. ఉన్కా కోయి ఫిక్స్డ్ రెసిడెన్స్ నహీ హై, యహాన్ పే నివాసీ భక్త హై కమ్ సే కమ్, జితనే భీ బ్రహ్మచారి హై నివాసీ భక్త, లేకిన్ ఉన్కే లియే ఐసా నహీ హై. అలగ్ అలగ్ నానా రత్న నిబద్ధ మూల విటప శ్రీత వృందావన, అలగ్ అలగ్ పేడోం కే నీచే సోతే థే. ఔర్ యహాన్ పే బతాయా గయా కి వో अलग अलग रात को अलग अलग पेड़ों के नीचे सोते थे. और आगे बताया गया विप्रग्रह स्थूल भिक्षा कहा मधुकरी सुखा रोटी चना चिबाए भोगा परिहारी. थोड़ा बहुत घर घर में जाते थे, मधुकरी करते थे, सूखी रोटी और चना खाते थे, बस थोड़ा रोस्टेड चना है जो भी मिलता था. करोण मात्र होते कंठ चिंद बहिर्वास కృష్ణ కథ కృష్ణ నామ నర్తన ఉల్లాస్. కోపిన్ ఆర్ కంత్ కంధాశ్రయ త్యక్త్వా తూర్ణమ శేష మండలపతి కోపిన కంధాశ్రితో, ఉస్కో స్వీకార్ కియా థా కోపిన్ ఆర్ కంత్ కో, ఆర్ ఉల్లాస్ హోకర్ అత్యంత ఉల్లాస్ మే నానా శాస్త్ర విచారణే కా నిపుణో సద్ధర్మ సంస్థాపకో, శాస్త్రం కే మర్మ కో పకడ్కర్ సబ్కే లియే సద్ధర్మ కి స్థాపన కరీ, లేకిన్ సాత్ సాత్ ఉన్నే ఏక్ దూసరే భీ బహుత్ జ్యాదా ఏక్ దూసరే సే భీ చర్చా కర్తే థే. అష్ట ప్రహార్ కృష్ణ భజన్ ఛాడి దండ శయనే నామ సంకీర్తన సేహా నాహే కోన దినే. ముష్కిల్ సే 24 ఘంటే జో హై వో పూరీ తరహ భగవాన్ కి సేవా మే థే,
मुश्किल से 1.5 घंटा सोते थे और बाकी पूरा समय भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी गिन के संख्या पूर्वक नाम भी लेते थे, कीर्तन भी करते थे और नमस्कार भी करते थे, प्रणाम भी करते थे गिन के। ये भी विधि है। चातुर्मास से आज प्रारंभ हो रहा है तो इसमें एक तपस्या इस प्रकार से भक्त कर सकते हैं कि संख्या पूर्वक नाम गान नति भी इन चीजों में कर सकते हैं। और ये भी है निद्राहार विहारक आदि विजितो सात्यंत दिनों चयो। शायद ये शिक्षा देने के लिए सनातन गोस्वामी का तुरोभाव चातुर्मास के पहले दिन आता है कि किस प्रकार हमें चातुर्मास के व्रत का भी पालन करना चाहिए। अभी भी याद है शायद 2-3 साल पहले यहाँ पे चातुर्मास के ऊपर प्रवचन सेवा थी, मुझे स्टिल रिमेम्बर। चातुर्मास का महत्व यह है कि चातुर्मास में जितने भी संकल्प हमने लिए हैं हमें कोशिश करनी चाहिए। वैसे बताया जाता है कि चातुर्मास का कोई व्रत कोई करता नहीं है तो उसको शर्म करनी चाहिए। तो हमारे लिए तो वैष्णव कैलेंडर में प्रोपा ने बचा लिया कि शाक से, तो वह एक है सबके लिए उपवास या कुछ तपस्या, लेकिन कुछ ना कुछ तपस्या अपनी अपनानी चाहिए। खास करके मंदिर के जो निवासी भक्त हैं, तपस्या ब्रह्मचर्य कुछ ना कुछ अपना सकते हैं जिससे कि अपने अपने सर्विस अथॉरिटी से कंसल्ट करने के बाद, काउंसलर से नहीं सिर्फ सर्विस अथॉरिटी से भी, क्योंकि सेवा अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, इस हिसाब से कुछ ले सकते हैं। लेकिन भक्तों के लिए तपस्या सोच रहे थे उस दिन कि इतने सारे लोग हैं बाहर जो बिना खाए बिना सोए काम करते दिन रात। अभी भी याद है जब बाहर काम करता था तो कई दिन ऐसे होते थे अपने आप फास्टिंग होता था, फास्टिंग टिल नून इस्कॉन में आने के पहले। कोई बड़ी बात नहीं थी, मतलब कई जानवर हैं जो एक जानवर है कंगारू रैट करके मरुस्थल में रहते, वो जीवन भर पानी नहीं पीता वो। तो ये सब है, भक्तों के लिए बहुत अच्छी तपस्या है, लेकिन हमारे लिए तपस्या है अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन स्मरण, इनमें कुछ ले सकते हैं, कुछ श्लोकों को कंठस्थ करने की तपस्या ले सकते हैं, कुछ ग्रंथ पढ़ने की कर सकते हैं, कुछ भक्तों का संग करने की तपस्या ले सकते हैं जिनके साथ संग ठीक से नहीं किया जा सकता। कई प्रकार के हैं तपस्याएं, कोई भी लिया जा सकता है। मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोग मुझे फोन कॉल कर रहे हैं पूरे चातुर्मास में, मैंने बोल दिया कबू भक्ति रस शास्त्र करे लिखना चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। और कभी कभी वो दिव्य ग्रंथों का संकलन करते थे, लेखन करते थे और सुनते थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में और उनके बारे में श्रवण करते थे। एई कथा सुनि महंतेर महासुख हया चैतन्य रे कृपा जाहे ताहे की विस्मया। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु के संगी जब रूप सनातन के इन लीला विलास के बारे में सुनते, इन कार्यकलापों के बारे में सुनते तो बोलते ये कौन सी अद्भुत बात है जिसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल चुकी है। ये है उनके बारे में जो वर्णन किया गया चैतन्य चरितामृत में। और बहुत सारे लीलाएं हैं, लीलाओं का लास्ट में समय मिला तो डिस्कस करेंगे, कुछ अभी फोकस करेंगे कुछ टीचिंग्स के ऊपर। विशेष करके जब वाराणसी में श्री सनातन गोस्वामी पाद मिले थे श्री चैतन्य महाप्रभु से, जब प्रकाशानंद सरस्वती और उनके 10,000 शिष्यों को हराकर चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति तत्व का, भक्ति सिद्धांत का ठीक से परिस्थापना कर डाली थी, उसके बाद शायद चंद्रशेखर आचार्य के घर पे उनकी मुलाकात हुई सनातन गोस्वामी की भगवान से। उसके बाद आगे 2-2.5 महीना उनको पूरा उपदेश दिया सनातन शिक्षा, जो कि अभी भी 20-23 अध्याय में मध्य लीला में इसका वर्णन है। बहुत ही लंबा डिस्कशन है, बहुत ही सुंदर डिस्कशन है, क्योंकि एक प्रकार से यह सब प्रारंभ होता है जब राम केली में रूप और सनातन मिले थे हुसैन शाह के राज में, जो सेवा करते थे साकर मल्लिक थे सनातन गोस्वामी, उनके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री थे, और उनके भाई दबीर का स्वरूप गोस्वामी पहले ही सेवा छोड़कर उनके लिए 10,000 सोने की मुद्रा छोड़कर आपत्कालीन परिस्थिति के लिए निकल पड़े थे। बाद में क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको रूप सनातन का नाम दिया था और बोला था कि वृंदावन में आओ, आगे जाकर ये सब छोड़ के वृंदावन आओ,
तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कभी कभी गुरु से मिलता है तपस्या के लिए, तो तुरंत अपना लेना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। साथ साथ रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए अलग इंस्ट्रक्शन था कि कुछ समय वेट करो, तुरंत शरणागति की जरूरत नहीं है। तो प्रत्येक शिष्य के लिए गुरु के द्वारा अलग अलग उपदेश होते हैं, विविध प्रकार के शिष्यों के उनकी मनोरीति के अनुसार या उनके साइकोफिजिकल नेचर जो बताया जाता है, उनके स्वभाव के अनुसार या उनके अनर्थों के अनुसार उनको उस प्रकार की सेवा दी जाती है। रूप सनातन को विशेष तरीके से बताया गया था, पहले से ही वैराग्य का जीवन ही है उनके लिए, बहुत विशेष कृपा है। और यहां पे बताया गया कि राम केली में जब मिले थे तो दोनों बहुत ही सरल वस्त्र में मिले थे, और अनुपम उनके भाई थे और अनुपम के पुत्र जीव गोस्वामी 2 साल के थे, वो भी थे साथ में, उनका भी मिलन हुआ था, इस प्रकार का वर्णन आता है। और महाप्रभु ने विशेष उनको आशीर्वाद दिया। और आगे जाकर जब महाप्रभु से मिले थे तो सनातन गोस्वामी ने बहुत ही विख्यात प्रश्न किया, जो कि हम सबको प्रश्न करना चाहिए, के आमी केनो अमाय जोटे तापत रॉय, मैं कौन हूं, मुझे क्यों प्रकृति के 3 गुण सता रहे हैं, और आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश मुझे क्यों हो रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न हमें करना चाहिए। इस कोण में आने के बाद भी कभी कभार गलत बात नहीं, एक दूसरे से स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, एक दूसरे से और स्वयं से। जब समस्याएं होती हैं तो हमें क्या कभी भी याद आता है, जो दूसरा व्यक्ति हमें जब कष्ट देता है तो क्या हमारे मन में कभी कभी आता है क्या कि ये आदि भौतिक क्लेश हो सकता है, कि हम सोचते हैं कि Why me? मैं शुद्ध भक्त, मेरे साथ क्यों हो रहे हैं, Why are bad things happening to good people like me? हम ऐसा सोच रहे हैं कि केनो अमाय जटे तापत रॉय, जो कि सही प्रश्न है, Why are bad things happening to good people? समस्या है कि हम अपने आप को गुड पीपल समझते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी ने वहां पर नहीं रोका कि क्या में बोलकर, उन्होंने बताया कि सब बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, इतने सारी भाषाएं जानते थे सनातन गोस्वामी, कन्नड़ा, संस्कृत, बांग्ला, पर्सियन, उर्दू, अरबिक, शायद तमिल भी, इतनी सारी भाषाएं जानते थे, तथाकथित ब्राह्मण परिवार से थे। फिर भी ये इतिहासकार बताते हैं और भौतिक इतिहासकार बताते हैं, कहीं भी वर्णन नहीं है कि निम्न जाति के थे जन्म से, कहीं भी वर्णन नहीं है किसी भी लेखाओं के अनुसार। फिर भी स्वयं को, क्योंकि यावन राजा की सेवा करी थी इसलिए अपने आप को पतित मानते थे, जगन्नाथपुरी पहुंचे थे, नवाब हुसैन शाह की सेवा त्याग कर जेल में डाला गया था उनको, 7,000 स्वर्ण मुद्राएं वहां के जेलर को कृष्णा कॉन्शियस ब्राइब देखकर, आगे दे। लेकिन जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, महाप्रभु स्वयं का दर्शन करने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, मैं सबसे अधम हूं, और ये सोचकर हरिदास ठाकुर के साथ बाहर खड़े थे, बाहर रहते थे। कौन सी जगह है? सिद्धबकुल, सिद्धबकुल में ठहरे थे, और महाप्रभु आते थे हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए प्रसाद लेकर जगन्नाथ जी का। तब उन्होंने देखा सनातन गोस्वामी को स्कैबीज था, क्योंकि कुछ गलत पानी पी लिया था, संभालना भी, वेदर भी ऐसा चल रहा है, भक्तों को भी ध्यान रखना चाहिए, इस वेदर में बहुत सारी बीमारियां होती है, सही पानी पीना है। तो सनातन गोस्वामी को कुछ इन्फेक्शन हो गया था स्कैबीज का, और पस आ रहा था, इसमें से बहता था, और महाप्रभु ने जब उनको गले लगाया तो उनको इतना बुरा लगा कि वो सोचने लगे कि आगे से भक्तों के सामने नहीं जाना चाहिए, और मैं जगन्नाथ जी के रथ के सामने महाप्रभु का नृत्य देखते हुए आत्महत्या कर लूंगा। वो श्लोक बाद में डिस्कस करते हैं, उसके पहले महाप्रभु ने उनको यह बताया कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, जब शरीर तुम्हारा ही नहीं है तुम इसका अंत कैसे करा सकते हो। तो एक शिक्षा सनातन गोस्वामी के जीवन से हमें यह समझना चाहिए कि उनका जीवन पूरा गुरु के आदेश अनुसार था। महाप्रभु ने बताया कि अपना अपना जो तथाकथित सेवा है उसको त्यागो, भौतिक सेवा उसको त्यागो और व्रज में चलो, उन्हें उसका पालन किया। महाप्रभु ने बताया आगे कि तुम अपने आत्महत्या करने की सोच रहे हो, ये जो सोच है तुम्हारे आत्महत्या की, इसको त्याग दो, क्योंकि तुम्हें आगे भी बहुत सारे कार्य करने हैं, तुम्हारे माध्यम से मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं। तो भक्तों के यही सोचना चाहिए कि अधिक से अधिक मैं गुरु का माध्यम बनूं। भक्ति तीर्थ महाराज हर रोज प्रार्थना करते थे जाने से पहले बाहर प्रचार के लिए कि मैं, हे भगवान मुझे कृपया, श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते थे, कृपया मुझे आपका उपकरण बनाए, आपका उपकरण बनाए जिससे कि मैं आपकी सेवा करूं। तो हर समय हमें ये प्रार्थना होनी चाहिए। और सनातन शिक्षा में जब महाप्रभु ने उनको बहुत सारी चीजें बताई, उनमें से कुछ चीजें शरणागति के लक्षण भी बताए थे, अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षसतीति विश्वास गोतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षट विधिम शरणागतिम। तो ये छह विधियां शरणागति के उन्होंने बताया था। ये भी बताया था साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा व श्रीमूत्र श्रद्धया सेवन, ये जो पांच विधि हैं सभी वैष्णव के लिए, ये भी बताया था। उनको बताया था कि भगवान के अलग अलग विभव प्रकाश, वैभव प्रकाश और उनके अलग अलग अवतार, लीला अवतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, शाक्तेवेश अवतार, पुरुष अवतार, युग अवतार के बारे में प्रत्यक्ष रूपेण नहीं बताया, क्योंकि ये स्पष्ट था कि महाप्रभु चौथे युग के अवतार हैं। लेकिन ये भी बताया, भगवान के धाम के बारे में वर्णन किया और भगवान के एक एक विस्तार के बारे में वर्णन किया। श्रीमद् भागवतम का कवर हम देखेंगे फर्स्ट कैंटो के, तो उसमें भगवान के अलग अलग विस्तारों का चित्र है, उसमें उनके अलग अलग हाथों में अलग अलग सीक्वेंस में श्रृंखला में है कि शंख चक्र गदा पद्म, उसके हिसाब से नाम महाप्रभु ने एक एक बताया। और जो हम तिलक धारण करते हैं उनके एक एक जो मंत्र है, 12 मंत्र हैं, उनमें से तीन तीन जो है एक एक वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के उनके विस्तार हैं। और ये जो महीना अभी आने वाला है दामोदर मास, 12 महीने ये जो 12 मिला के जो 12 हैं उनके नाम से एक एक महीना भी बनता है, वैष्णव मास आगे आएगा, दामोदर मास भी आएगा। तो ये भी बताया और साधना भक्ति के बारे में बताया, रागात्मिका भक्ति के बारे में बताया, रागानुगा भक्ति के बारे में बताया। और यहां पे बताया गया कि इस सारी शिक्षा देने के बाद श्री सनातन गोस्वामी ने बताया था कि मुझे ये शिखालून तोरे पूरा का सकला यही तो मारा जा रहा है ते हावे मारा बोला। अब आप कृपया बताइए, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि आपने मुझे जो भी आदेश दिया है वो मेरे हृदय में बसे रहे, मैं भूलू ना उसे। एक शिक्षा है हमारे लिए कि हम जो भी अध्ययन करते हैं, विशेष करके चतुर्मास में या बाकी 8 महीनों में जो भी अध्ययन करते हैं, भगवान से विशेष प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी कृपा से मेरे स्मरण में ही रहे, क्योंकि मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान ही जो है स्मरण शक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं और भूलने की प्रवृत्ति भी देते हैं। तबे महाप्रभु तारे शिरे धारी करे वर दिला एई सब अस्पुर का तुम्हारे। तो महाप्रभु ने अपना हाथ उनके सर के ऊपर रखा और बोला, मैंने जो भी तुम्हें बताया इस सब का तुम्हें स्फुरण होगा। महाभारत में अन्यत्र वर्णन है, क्योंकि कर्ण ने परशुराम जी को रुष्ट किया था, इस प्रकार का शाप मिला था कि सही एन मौके पे, जैसे बताते हैं व्यावहारिक भाषा में, एन मौके पे सब कुछ भूल जाओगे, ऐसा हुआ। तो कभी कभी हमें भी होता है, लेक्चर के बीच में हम बैठते हैं, जो सबसे बढ़िया पॉइंट्स प्रिपेयर किया था वो सब समय पे याद नहीं आते। प्रत्यक्ष अनुभव है और वर्तमान अनुभव है। प्रभु रूप देशामृत सुने जे जना अची रात मिलाया तारे कृष्णा प्रेम दना। जो भी सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के बीच के संवाद को सुनता है
या बोलता है या उसके बारे में थोड़ा भी बोल देता है, उसे कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो आज एक अच्छा ग्रंथ है, आज यू कैन हैव स्पेशल सेल फॉर टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य फॉर डिवोटीज, अगर है तो बहुत अच्छा है, तो महत्वपूर्ण है। आगे जो अधो गुरुपादाश्रय श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम साधु वर्तमान गमनम विश्रम्बेन गुरोर सेवया सद्धर्म पृच्छा भोगादि त्याग कृष्णाय हेतवे, ये जो जितने भी विधि हैं भक्ति के लिए अनुकूल विधि है, जो 64 अंग बताए गए हैं उनका भी वर्णन किया था महाप्रभु ने। एक प्रकार से पूरा फिलॉसफी का निचोड़ दे दिया था और उन सबका मूल निचोड़ यही था कि महा सनातन गोस्वामी का प्रश्न था के अमी जट केनो अमाय जटे तापत्र आय, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया जीवेर स्वरूप हॉय कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश, पूरा भेदा अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। कृष्ण की तटस्थ शक्ति है जीव, लेकिन भेदा अभेद प्रकाश है उनका, कृष्णेर तटस्थ शक्ति, और कृष्ण का नित्य दास भी है जीव। ये प्रमुख शिक्षा जो है उन्हें दी गई थी। आगे श्री सनातन गोस्वामी भी हम भक्तों के लिए विशेष शिक्षा देते हैं, अन्यत्र शास्त्रों में आता है जिसको कोट करते हैं सनातन गोस्वामी, यथा कांचनताम यति कामस्याम रस विधानतः तथा दीक्षा विधान है न द्विजत्वम जायते नृणम। तो प्रत्येक भक्त जो यहां बैठा है उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि सनातन गोस्वामी पाद की शिक्षा है कि उन्हें दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उसके लिए उत्साह ही होना चाहिए, उसके लिए तैयार हो रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं शुद्ध नहीं हुआ इसलिए दीक्षा नहीं ग्रहण करूंगा, मैं शुद्ध नहीं हूं इसलिए दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि दिव्य ज्ञान में तो दद्यात कुर्यात पापस्य संक्षयम। तो सनातन गोस्वामी पाद इस पर जोर दे रहे हैं दीक्षा ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है, और अगर दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आज सनातन गोस्वामी से यह भी प्रार्थना हमें करनी चाहिए कि हमने दीक्षा का जो संकल्प लिया है, चार नियमों का पालन और 16 माला का जप और बाकी जितने भी विधि हैं उन सबका सटीक पालन करें, ये आशीर्वाद मांगनी चाहिए हमें सनातन गोस्वामी पाद से। आज हमने दीक्षा का जो संकल्प लिया है और प्रभु का है तोमार देह मोरा निज धना तुम्ही मोरे करिया चा आत्मसमर्पण, क्योंकि तुमने मुझे तुम शरणागत हुए हो मेरे चरण कमलों में, इसलिए अब से ये शरीर इस शरीर के ऊपर तुम्हारा कोई दावा नहीं है, ये शरीर मेरा है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। और सनातन गोस्वामी महाप्रभु ने अपने शिष्यों के द्वारा अलग अलग सिद्धांत सिखाए, हरिदास ठाकुर के द्वारा नाम के प्रति रुचि सिखाया और रूप सनातन के द्वारा विनम्रता सिखाई, विनम्रता का प्रदर्शन कराया। और इसका एक उदाहरण है कि जब यमेश्वर मंदिर में जब महाप्रभु गए थे, वहां से फिर उनको कुछ दावत का न्योता मिला था, वहां पर निमंत्रण हुआ था, वहां पर कुछ स्वीकार कर रहे थे भक्तों के द्वारा, प्रसाद स्वीकार कर रहे थे, तो उनसे मिलने के लिए सनातन गोस्वामी पाद आए, उनको बुलावा दिया गया था, और वहां पर सिंहद्वार से होके आना था, उनके लिए रास्ता सिंहद्वार से होके आना था, लेकिन सिंहद्वार पे क्योंकि बहुत सारे भक्त आएंगे और इनके शरीर पे भी तब स्कैबीज का रोग था और ये अपने आप को निम्न जाति के भी समझते थे, तो उन्होंने पूरा जो रेत है सागर के तट का उसके ऊपर से चलते हुए आए, जो कि तपती हुई रेत थी वो, उसके ऊपर से आए। और महाप्रभु ने पूछा भी उनसे आप कैसे आए, महाप्रभु सब जानते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं रेत से होते हुए आया, उन्होंने बताया तपते हुए रेत से तुम आए, और फिर बताया मर्यादा रखिले तुष्ट कोयले मर मना तुम्ही आई छे ना करीला करे कौन जाना, तुम नहीं तो और कौन कर सकता है ऐसी बात। तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपने शिष्यों के द्वारा भी महाप्रभु, अपने भक्तों के द्वारा भी, कि वैष्णव सदाचार कैसे होना चाहिए,
तो विनम्रता, वैष्णव सदाचार और विरक्ति और गुरु की सेवा, गुरु के प्रति समर्पण। महाप्रभु ने उनके देह की तरफ देखा कि श्रीकांत जो कि उनके ब्रदर इन लॉ थे, क्योंकि ये तीन भाई थे, उनकी एक बहन भी थी, उनकी पत्नी श्रीकांत थे, जिनके पास कुछ 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी घोड़े खरीदने के लिए हुसैन शाह के लिए। उन्होंने उसमें से कुछ देना चाहा, मेरे साथ रहो बोला, लेकिन सनातन गोस्वामी बिल्कुल मना कर दे, मैं रहूंगा नहीं आपके साथ, क्योंकि भक्त के लिए ये अच्छा नहीं है। पाउंड एंड शिलिंग्स मैन, प्रभुपाद बोलते हैं। महाप्रभु ने प्रताप रुद्र के सेवा के संघ का तिरस्कार किया ये बोलकर, बिकॉज पाउंड एंड शिलिंग्स मैन। उसी प्रकार यहां पर श्रीकांत जो कि स्वयं उनके ब्रदर इन लॉ थे, उनको उनका संग त्याग दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने बहुत ही अच्छा एक शॉल दिया, पता नहीं पश्मीना था क्या था, एक ऊनी शॉल दिया, ब्लैंकेट दिया, वुलन ब्लैंकेट, और उसकी तरफ ही देख रहे थे बार बार महाप्रभु। जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो सनातन गोस्वामी, तो इनको समझ में आ गया, और चंद्रशेखर आचार्य ने उनको बताया पहले उनको स्वच्छ करवा दो, शेव वगैरह करवा दो, हेड शेव वगैरह करके आए और स्वच्छ वस्त्र दिए उनको। उन्होंने सनातन गोस्वामी ने बताया नहीं नहीं आप अपने पुराने कुछ कपड़े दे दो, और फिर बताया कि जब ये वूलन ब्लैंकेट देखा तो गंगा स्नान करते समय बगल में एक शायद बंगाल से एक भिखारी बैठा था और उसको अपना ब्लैंकेट दे दिया और उसको पुराना बिल्कुल फटा हुआ क्विल्ट या उसको क्या रजाई उसको ओढ़ लिया, और महाप्रभु उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभुर भक्तर गणन वैराग्य प्रदान, महाप्रभु भक्त गण वैराग्य प्रदान, महाप्रभु अपने भक्तों से वैराग्य की अपेक्षा करते हैं, हम सबसे महाप्रभु वैराग्य की अपेक्षा करते हैं। तो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात कि हम अपने आप से प्रश्न करें, क्या हम महाप्रभु के आंदोलन में हैं, तो क्या महाप्रभु भक्तगण हैं हम? तो इसलिए प्रभु सनातने परम जतने शिक्षा दिला जहा चिंता शेई सबा, प्रभु सनातने परम जतने शिक्षा दिला जहा चिंता शेई सबा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही बताते हैं कि महाप्रभु ने जो सनातन गोस्वामी को जो भी शिक्षा दिया, इसलिए हमें उन सबका चिंतन करना चाहिए। परम जतने, उन्होंने जितनी भी शिक्षा दी है उन सबको हमें हृदयस्थ करना चाहिए। बाकी बहुत सारी लीलाएं श्री सनातन गोस्वामी पाद से जुड़ी हुई, इतना हम ध्यान रखें कि जीवन ठाकुर ने उनके आदेश अनुसार पारस पत्थर को, स्पर्श मणि को जमुना में फेंक दिया, उनके आदेश अनुसार नहीं उनके संकेत अनुसार, कि महा अगर सनातन गोस्वामी पाद जिनके पास एक पारस मणि है वो मुझे दे रहे हैं और इतना ऊंचा पद वो त्याग कर चुके हैं, तो फिर ये पारसमणि मेरे लिए जघन्य है। उनको लग रहा था कि ये कुछ बिच्छू है जो ढस रहा है मुझे, उन्होंने उसको जमुना में फेंक दिया और फिर उनका उनकी उनसे दीक्षा ग्रहण करी। तो सनातन गोस्वामी पाद के जीवन से हम उनकी विनम्रता सीखते हैं, गुरु के प्रति शरणागति, समर्पण और वैराग्य। और मुख्य बात यह भी है कि आखिरी समय तक दृढ़ संकल्प भी था उनका, उनका नियम था कि जो गोवर्धन की परिक्रमा करें, अंतिम समय में आकर भगवान ने स्वयं उनको गोवर्धन शिला दी जिसका हम दर्शन आज भी कर सकते हैं। तो अपने नियमों के पक्के हमें रहना चाहिए, साधना के नियम जो भी है या सेवा के नियम बहुत ही जरूरी है, तत्त कर्म प्रवर्तना। और अंतिम समय बताया जाता है कि गिरिधारी स्वयं आए थे जो परिक्रमा कर रहे थे अपने शिला का, गिरिधारी स्वयं आए उनको ले जाने के लिए वापस, कुछ आचार्य बोलते हैं उन्होंने मना किया नहीं आऊंगा, कुछ ठीक नहीं लग रहा था उनको, फिर स्वयं वो राधा मदन मोहन के रूप में आए, श्रीमती राधा रानी जो कि उनकी इष्टा है, राधा मदन मोहन दोनों आए प्रकट हुए और आज ही के दिन उनका तिरोभाव हुआ था, उनको साथ लेते हुए उनके नित्य लीला में लेके गए भगवान। तो श्रील सनातन गोस्वामी पाद की बहुत सारी लीलाएं हैं, अगली बार जब आविर्भाव दिवस का वर्णन, क्योंकि नहीं है इस्कॉन कैलेंडर में शायद, तो कोई भी अन्य अवसर में किसी को मिले तो उन लीलाओं का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन जरूर पढ़े, विशेष करके कुछ लीलाएं हैं जो कि चतुष्पुष्पांजलि के संकलन में रूप, आई थिंक आई जस्ट स्टेट दिस वन पास्ट टाइम एंड कंप्लीट इट योर परमिशन. चतुष्पुष्पांजलि में रूप गोस्वामी पाद ने लिखा था कि श्रीमती राधा रानी की जो वेणी है वो सांप की तरह है. तो क्योंकि नाना शास्त्र विचार नायक निपुणों एक दूसरे से चर्चा करते थे, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एक दूसरे से चर्चा करते थे, तो बात आई तो उनको लगा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि श्रीमती राधा रानी की वेणी को आप सांप से तुलना कर रहे हो, उसकी तुलना. ये बोल के सनातन गोस्वामी पास चले गए. आगे जब राधा सार या राधा कुंड के पास एक स्थान है वहां पे पहुंचे, तो वैसे तो कदम तेर में बैठे हुए रूप गोस्वामी, वो तो दूसरा पास्ट में, ठीक है, कदम तेर तो दूसरा पास्ट में. यहां पर बताया गया कि जब राधा सार के पास गए थे, राधा सरोवर के पास गए थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत ही तेजस्वी प्रज्वलित ज्वलंत कन्या झूला झूल रही है और साथ में उसके उसके जितने भी उनके साथ जितने भी मित्र हैं, उस मित्र का लेडीज से क्या बोलते हैं, मित्रा, सखियां, ओके ठीक है, सखियां, सो सखियां, तो सखियां उनके साथ थी. और उन्होंने देखा अचानक कि उनकी वेणी इतनी लंबी सी थी, अचानक उनको लगा कि वो सांप है, और लाली सांप ऐसा चिल्लाते उसके पास गए. और जितने भी बच्चे और वो जो जो विशिष्ट बालिका कन्या थी वहां से हंसते मुस्कुराते अप्रकट हो गए, अचानक गायब हो गए. तब सनातन गोस्वामी पाद को समझ में आया कि ये स्वयं श्रीमती राधा रानी थी जिनकी वेणी की तुलना सांप से की गई थी रूप गोस्वामी के पाद द्वारा. और श्रील सनातन गोस्वामी पाद सोच रहे थे कि किस प्रकार इस वेणी का दर्शन करते हुए कृष्ण को लगता होगा कि मैं जहरीले सांप द्वारा ढसा गया हूं, और इतने बेचैन हो जाते थे भगवान, जैसे कि किसी जहरीले सांप ने किसी को ढसा हो तो कितना बेचैन होगा. वैसे ही भगवान भी स्वयं बेचैन होते होंगे श्रीमती राधा रानी की वेणी को देखते हुए. इस प्रकार से सनातन गोस्वामी के अंदर मनन चल रहा था. और फिर वो आग चले गए वापस, रूप गोस्वामी पाद को बताया कि आपने जो लिखा है ये मनोधार्मिक नहीं है, आपने बिल्कुल सही लिखा है, ये शास्त्र के अनुसार ही है. श्रील सनातन गोस्वामी पाद से आज हम कृपा की याचना करते हैं कि हमने जो दीक्षा ग्रहण किया है उसका सार्थक करें, गुरु के प्रति पूरी तरह शरणागत हों, वैराग्य का भी अनुशीलन करें, विनम्र भी रहे. और श्रील व्यासदेव से ये याचना करें कि नित्यम भागवत सेवा हम कर सकें, भागवत के तत्व को हम समझें, और इस चतुर्मासी के समय हम ये कोशिश करें कि अधिक से अधिक गुरु की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें, तपस्या करें. क्योंकि हम हरो रुष्टे गुरु स्त्राताम गुरु रुष्टे न कश्चन तस्माद एवं प्रयत्न न गुरुम एव प्रसादयत. कुछ तपस्या भी हम अपना रहे हैं इस महीने में, वो गुरु की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए. और भगवान से प्रार्थना करें कि मैं जो भी तपस्या कर रहा हूं इसका फल मैं अपने गुरुदेव को देना चाहता हूं, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके आगे होने वाले बहुत सारी सेवाएं हैं उसमें आने के लिए. क्योंकि जैसे भक्त अपराध करता है तो गुरु को उसका कर्म लगता है, ग्रहण करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार भक्त अच्छी सेवा करता है, अच्छी साधना करता है, अच्छी तपस्या करता है तो इसका लाभ भी गुरु को प्राप्त होता है, जिससे कि वो और आगे और भक्तों को सेवा में लगाए. तो हमारे लिए कोशिश यही होनी चाहिए कि श्री सनातन गोस्वामी से प्रेरणा लेकर हमें अपने गुरुदेव जो कि व्यासदेव की परंपरा में हैं उनकी प्रसन्नता के लिए ये चातुर्मास और आगे आने वाले बाकी सारे 8 महीने भी तपस्या करनी चाहिए. हरे कृष्णा. आई डोंट नो इफ यू हैव टाइम फॉर क्वेश्चंस. दो प्रश्न ले सकते हैं, एक प्रश्न प्रभु से, एक प्रश्न माताओं से. माताओं में कोई प्रश्न है? प्रभु उसमें कोई प्रश्न है? इसमें दो सवाल क्वालिफाई नहीं होते, प्रसाद में क्या है और ये कोई प्रवचन था क्या, ये दो प्रश्न पूछ ना जाए. ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय. चातुर्मास महामहोत्सव की जय, गुरु व्यास पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, निताय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरे हरे।